आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी रिएक्टर द्वारा क्रिटिकलिटी हासिल करने को देश की बड़ी वैज्ञानिक सफलता बताया। भोपाल में आज विधानसभा की 19 नई समितियों की पहली बैठक संयुक्त होगी। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सुगम संपर्कता परियोजना के तहत मजरों टोलों को सड़कों से जोड़ने के निर्देश दिए और प्रदेश के 24 जिलों में 9 अप्रैल तक आंधी और बारिश की चेतावनी। 11 अप्रैल से एक और नया सिस्टम होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण बताते हुए यह भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की एक निर्णायक शुरुआत है। 500 मेगावाट क्षमता वाला ये उन्नत रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन पैदा करने में सक्षम है, जो भविष्य में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके पूर्णता चालू होते ही रूस के बाद भारत व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। राज्य विधानसभा की नवगठित समितियों की पहली संयुक्त बैठक आज विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गठित इन समितियों की अध्यक्षता स्वयं श्री तोमर करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित सभी 19 समितियों के सभापति और सदस्य शामिल होंगे। बैठक में लोक लेखा प्राकलन और महिला एवं बाल विकास जैसी प्रमुख समितियों के आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए सुगम संपर्कता परियोजना की समीक्षा करते हुए आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर दिया। बीते कल सोमवार को भोपाल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। इस परियोजना के तहत 1,000 करोड़ रूपए की लागत से 100 से अधिक आबादी वाले मजरों टोलों और सांदीपनी स्कूलों तक सड़कें बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि सड़कों के चयन और डीपीआर के लिए सीप्री सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। प्रत्येक जनपद पंचायत अब 3 करोड़ रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति दे सकेगी, जिससे ग्रामीण आवागमन और भी सुगम होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल भोपाल में आयोजित आरोग्य भारती की कार्यशाला में स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र साझा किया है। राज्यपाल ने कहा कि इंद्रियों पर नियंत्रण और प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली ही निरोगी रहने का आधार है। उन्होंने आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि जल, वायु, सूर्य और संतुलित आहार के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाया जा सकता है। राज्यपाल ने विशेष रूप से मिलेट्स के सेवन, पर्याप्त नींद और प्राकृतिक वातावरण के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 5 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रबी और खरीफ फसलों के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करना है। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश के अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन के अनुसार क्षेत्रवार योजना बनाना अधिक प्रभावी होता है।
5 राज्यों के कृषि मंत्री रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, जिसमें हमारे मध्य और पश्चिम भारत के प्रमुख राज्य हैं और हम सब बैठ के रबी और खरीफ की फसल के लिए कार्य योजना क्या बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग माटी है, एक साथ बैठ के पूरे देश का विचार नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये विचार किया कि रीजनल कॉन्फ्रेंस की जाए और उस रीजनल कॉन्फ्रेंस में इस क्षेत्र की कृषि की दिशा क्या हो, उस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। भारत सरकार नीति बनाती है, योजनाएं बनाती, कार्यक्रम बनाती है, लेकिन उनके क्रियान्वयन की जवाबदारी है राज्य सरकारों की। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टीम इंडिया एक साथ मिलकर काम करे, केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया है। 5 राज्यों के साथ मिलकर हम हमारी सब योजनाओं के बारे में, अगली खरीफ की फसल के बारे में व्यापक रूप से विचार विमर्श करेंगे। खेती के सामने इस क्षेत्र के किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे।
अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर नजर रख रही है।
There has been no unusual volatility.
जरूरी सामानों की कीमतों में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। इस साल दालों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुआ है। सरकार दालों का भंडार सुरक्षित रखती है और फिलहाल हमारे पास लगभग 28 लाख मीट्रिक टन दाल का स्टॉक मौजूद है।
लाख मीट्रिक टन।
राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय ने अलग अलग जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव पर विधिवत विचार और सभी संबंधित पहलुओं के निष्पक्ष आकलन के बाद राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के सुनियोजित विकास और औद्योगिक समृद्धि के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को हुई बैठक में बताया गया कि शहर की पहली एलिवेटेड रोड का प्रथम चरण इस साल नवंबर तक पूरा हो जाएगा। सिंधिया ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को 31 अक्टूबर तक पूरा करने और महाराज बाड़ा को नो व्हीकल जोन बनाने पर जोर दिया। साथ ही जौरासी में अंबेडकर धाम में बाबा साहब के पर केंद्रित विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने के भी निर्देश दिए। भारतीय रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क में सुरक्षा, सिग्नलिंग और संचार अवसंरचना मजबूत करने के लिए 1364 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें रेल इंजन पर स्वदेशी कवच प्रणाली स्थापित करना, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का विस्तार करना और पैनल इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बदलना शामिल है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भोपाल और ग्वालियर समेत 24 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर बाद ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ओलावृष्टि और गरज चमक का ये दौर 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। किसानों को सलाह है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि 11 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में दस्तक देने वाला है। अब बात क्रिकेट की। IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला हुआ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद क्षेत्रीय स्तरीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन खंडवा जिले के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रोशनी में किया गया। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली। आयोग के अध्यक्ष SN मिश्रा ने बताया कि प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य प्रशासकीय कार्यों की दक्षता को बढ़ाना और सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराना है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने TL बैठक में निर्देश दिए कि जिले में समर्थन मूल्य पर 10 अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं उपार्जन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ले और उपार्जन से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करें। जिला रोजगार कार्यालय नर्मदापुरम द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से युवा संगम रोजगार तथा स्वरोजगार मेले का आयोजन 10 अप्रैल को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इटारसी में आयोजित होगा। झाबुआ जिले में संकल्प से समाधान अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान की शुरुआत 12 जनवरी से हुई, जो 4 चरणों में चलते हुए 31 मार्च को पूरी हुई। डिंडोरी जिले की प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ी चांदनी नरेती ने जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के अंतर्गत उज्जैन में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। सतना जिले में कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ई ऑफिस प्रणाली विषयक प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और जो सोमवार से शुरू हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। नमस्कार।